जर्मन में दो भाई थे, एल्बर्ट और अल एल्ब्रेक्ट ड्यूरर। वो दोनों ही चित्रकला सीखना चाहते थे और देश के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के पास वो दोनों पहुंचते हैं। वो चित्रकार, वो गुरु उन दोनों से पूछता है कि मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा पर उसके बदले तुम दोनों मुझे क्या दोगे। वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, हमारे पास कुछ भी पैसा भी नहीं है, हम आपको क्या देंगे। ये कला सीखना एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है। गुरु कहता है ठीक है, परंतु सीखने के लिए पेंट, ब्रश, कागज, इन सब में तुम्हारे पास कुछ है क्या। वो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें भी नहीं है, कला ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। गुरु कहता है ठीक है, पर तुम लोग रहोगे कहाँ, खाओगे क्या। वो कहते हैं हमारा कोई घर ही नहीं, हम सब कुछ छोड़कर आ गए हैं गांव से, आने का कहाँ से मिलेगा वो भी हमको पता नहीं। गुरु कहते हैं देखो मैं भी गरीब इंसान हूँ, मुझे भी अपने पेट के लिए कुछ तो चाहिए। अगर तुम बाकी चीजें नहीं दे सकते हो, कम से कम अपने रहने का और खाने की व्यवस्था तुम लोग करो, बाकी मैं देख लूंगा। वो दोनों भाई बैठते हैं, विचार करते हैं क्या किया जाए, टॉस करते हैं। ये एक भाई 5 साल तक मजदूरी करेगा, कठोर श्रम करेगा, और दूसरा भाई चित्रकला सीखेगा, और 5 साल के बाद फिर जो भाई श्रम कर रहा था वो चित्रकला सीखेगा। तो एल्बर्ट का नाम आता है और एल्बर्ट चित्रकला सीखने लग जाता है, और दूसरा जो भाई होता है एल्ब्रेक्ट चित्रकला सीखने लगता है, और एल्बर्ट जो होता है वो मीलों में पत्थर तोड़ने का काम करता है, मजदूरी करता है दिन रात, ताकि वो दोनों रह सके, कुछ पैसा कमा सके, खा सके। 5 साल पूरे हो जाते, एल्ब्रेक्ट अपने भाई के पास आता है और कहता है मेरे 5 साल पूरे हुए, अब आप जाकर चित्रकला सीखो, जितना सीखना था मैंने तो सीख लिया। वो एल्बर्ट कहता है अब मैं चित्रकला नहीं सीख सकता। क्यों, कोई कारण? वो कहता है कठोर मेहनत करते करते मेरे हाथ कठोर हो गए, खुरदरे हो गए, चित्रकला के लिए जो संवेदनशीलता चाहिए, जो नाजुक हरकतों की आवश्यकता होती है वो अब मेरे हाथों में नहीं रही, अब मैं चित्रकला नहीं सीख सकूंगा, अब मैं यही काम करूंगा। परंतु एल्ब्रेक्ट कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने मेरे लिए इतना त्याग किया, आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी चित्रकला छोड़ दूंगा। उसका भाई कहता है नहीं, तुम ना छोड़ना, इस संसार को सौंदर्य की आवश्यकता है, इस संसार को सुंदरता चाहिए और वो तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। और रही बात मेरी, तो तुम्हारे हर चित्र में मेरे ये हाथ, ये कठोर हाथ दिखाई देंगे। 1508 में एक चित्र बना था जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्र है, ऐसे हाथ जोड़ते हुए, देखा है आपने? एक चित्र था जो कि बहुत बहुत प्रसिद्ध है। इस चित्र को कहते हैं द प्रेइंग हैंड्स। ये वाला चित्र, दो हाथ जुड़े हुए हैं। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जिसको माना जाता है, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर द्वारा बनाया गया ये चित्र है। उसके भाई को कोई नहीं जानता, उसके भाई का क्या हुआ किसी को नाम तक नहीं पता उस अल्बर्ट का। संसार माइकलेंजेलो, अल्ब्रेक्ट, लियोनार्डो दा विंची, इन सब लोगों को जानते, पर इन सब के पीछे कोई और भी था जिसकी संसार को खबर ही नहीं, और वो जो थे वह दृश्य थे, वो गुप्त रहे, परंतु वो उनका त्याग ही था। और त्याग त्याग तभी है जब त्यागी गायब हो जाए। अगर त्यागी का मैं रहता है, वो त्याग है ही नहीं। जहां मैं गिर जाए वही त्याग। कहता है मेरे ये हाथ, ये कठोर हाथ तुम्हारे हर चित्र से दिखाई देंगे। ये उसके भाई का त्याग कहो या जो भी कहो, पर त्याग एक ऐसी भावना है, चाहे लौकिक या अलौकिक, दोनों ही संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इस अलौकिक जीवन में जो सबसे बड़ा त्याग है वो है देहभान का त्याग। और आज सुबह का वरदान साकार मुरली का, अतिंद्रिय सुख में दो बाधाएं हैं, कौन सी? अतिंद्रिय सुख में दो बाधाएं हैं, कौन सी? आकर्षण किसका? एक संबंध का और दूसरा इंद्रिय सुख का, कर्मेंद्रियों का। ये दो सबसे बड़ी बाधाएं। सबसे बड़ा त्याग है इंद्रिय सुख का, परंतु त्याग बंधन ना बन जाए, त्याग दमन ना बन जाए, त्याग जबरदस्ती ना हो। त्याग ऐसे हो जैसे एक झाड़ है और उसके पत्ते सूख जाते और गिर जाते, वो व्यर्थ हो गया है, वो जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती अगर कुछ छोड़ते हैं तो उसका चिंतन चलता है, उसकी यादें आती है, और सारी मानवता को एक ही व्यसन है, भोग। चाहे काम का, चाहे भोजन का, चाहे इंद्रियों के किसी भी सुख का। और योगी की पहचान ही एक ही बात से है, वो इंद्रिय भोगों से मुक्त रहता है। बाकी सब कुछ कर रहा है पर इंद्रिय सुखों में लिप्त है, उसको योगी नहीं कहते। ऐसा क्या किया जाए? ये जो इंद्रिय सुखों का एडिक्शन, चाहे खाने का चाहे काम विकार का, मैं दो ही है, इससे चेतना ऊपर उठ जाए। अभी अभी हम एक जगह गए थे जहाँ कुमारों की भट्टी हुई, बहुत दूर दूर से कुमार आए थे, लगभग 400-500 और उन कुमारों के कुछ प्रश्न थे जो कि एक हफ्ता पहले से हम ले रहे थे। ये प्रश्न इतने भयंकर है, इतने भयंकर, उसमें से कई कुमार 30-40 साल से सेंटर पर रहने वाले हैं, उसमें से कई कुमार कई साल मधुबन रह चुके हैं, आर पार सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ जानते हैं। उनके ये प्रश्न इतने खतरनाक है कि वो सुनकर पढ़कर उस पर भी एक 2-3 घंटा सेशन चला था, परंतु उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न ये है कि ये प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न, उसमें ऐसे ऐसे शब्द है जो उच्चारण भी नहीं किए जा सकते। और वो रियल है, उसमें कोई कल्पना, कोई सारी क्लासेस जैसे धुआं है इन प्रश्नों के सामने, इतने आर पार के ये प्रश्न है। और यही वास्तविकता है और यही सच्चाई है, ये सच्चाई यहाँ है। और हम जो बदल ला रहे हैं, जो परिवर्तन करने वाले हैं, कर रहे हैं, और जो कुछ चल रहा है वो सब कहीं और इधर, और इनके प्रश्न यहाँ, इनमें से किसी में इन सब का उत्तर है ही नहीं। सबसे पहले तो ये बात स्वीकार करनी होगी कि कुछ तो मिसिंग है, जो कुछ हो रहा है उसमें, उसके बाद ही एक मार्ग निकल सकता है। और जो सार है वो यही है, वो भोग आकर्षित करते, वो सुख खींचता है, इंद्रियों का सुख। शरीर में केमिकल है डोपामिन, सारा खेल रासायनिक है, डोपामिन डंपिंग, काम विकार सबसे ज्यादा रिलीज होता है पूरे शरीर में, तन बदन में सुख की अनुभूति होती है, परंतु बड़ा धोखे वाला है वो, तुरंत थोड़ी देर के बाद खालीपन रिक्तता आ जाती है, पश्चाताप से चेतना भर जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद वही क्रेविंग, उसी सुख की चाहना आत्मा को खींचती है, और उसके बाद फिर मुरली, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन सब में भी वही डोपामिन रिलीज होता है, परंतु इतनी हाई मात्रा में नहीं, तो वो इंटरेस्ट नहीं लगता है। ये दो टर्म्स है, डोपामिन डंपिंग, डोपामिन लोडिंग, जो शॉर्ट्स और रील्स होते हैं, जो लोग देखते हैं ना शॉर्ट्स रील्स, उससे डोपामिन डंपिंग होता है, डोपामिन का लेवल एकदम ऊपर चला जाता है, और फिर जब नीचे आता है, और फिर तब हम मुरली, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, क्लासेस, चिंतन, मनन, वो सब में इंटरेस्ट इतना नहीं हो पाता। इसलिए साइकोलॉजी कहती है कि सुबह सुबह उठ के कोई रील्स, कोई शॉर्ट्स, कोई इंटरनेट, कोई गूगल, कोई वीडियोस, ये सब ना देखा जाए शाम तक, क्योंकि ये देख लिया कि मन ऊपर चला जाता है, तुरंत उसे क्षणिक खुशी मिलती है, और फिर धोखा हो जाता है, फिर बाकी चीज़ों में मन नहीं लगता। तो आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे अतीन्द्रिय सुख की, जिसके लिए बाबा ने क्या कहा, दो बातें, पहला संबंध और दूसरा इंद्रिय सुख। ये जो इंद्रिय सुख है इसमें ऐसा क्या है, कोई भी मूवी होती है उसका एक ट्रेलर होता है, जो ट्रेलर होता है ना वो बहुत सुंदर होता है। भ्रामक सुख काम विकार भी वैसा ही उस ट्रेलर की तरह है। यदि पूरी मूवी देखी जाए खींच के तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर। उसी तरह जो भी इंद्रिय सुख है वो ट्रेलर बहुत सुखदाई है, परंतु यदि हम उस मूवी को एंड तक देखें आर पार फास्ट फॉरवर्ड करके, तो उसकी सारी वास्तविकता हमारे सामने आ जाएगी और वो इंद्रिय सुख ऐसे ही गिर जाएंगे जैसे सूखे पत्ते। हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ ये सारे कुमारों के ये इतने प्रश्न और भी बहुत सारे प्रश्न थे, इन सब में एक ही चीज़ दिखाई दी है। और ये भी कोई साधारण लोग नहीं है जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अनन्य कुमार। कहाँ कहाँ वो रात रात भर बाइक से आए भट्टी करने, होल नाइट ट्रैवल करके, कहाँ गोवा और कहाँ ये पूना। और ऐसा नहीं कि उनको, वो खुद भी स्पीकर से, वो खुद भी भट्टियाँ करने वाले कराने वाले, पर मन में प्रश्न है कैसे क्या किया जाए। और जो कुछ किया कर रहे हैं अमृत वेला मुरली चिंतन भट्टिया सेवाएं दिन भर, और भी क्या करें जिससे संपूर्ण 100% ब्रह्मचर्य संपूर्ण निर्विकारिता की अवस्था आ जाए। तो सबसे पहले दमन से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। आज का दिन आपके पास है और कल का भी दिन, ये दो दिन अपने पूरे जीवन को आंखों के सामने लाना है, जैसे मूवी चल रही है, क्या क्या हुआ और कहाँ पहुँचे, बचपन से अब तक, समर्पित जीवन की शुरुआत से अब तक, किन किन स्थानों पर हम गए, कौन कौन से स्थान उसका चिंतन, किन किन लोगों के संपर्क में आए उसका चिंतन, किन किन आत्माओं से कड़े हिसाब थे उनका चिंतन। इन दो दिनों में बैठ कर केवल देखना है साक्षी, क्योंकि ऐसे बहुत से स्पॉट्स है, हर्ट्स है, उनको हीलिंग की आवश्यकता है भीतर। एक कुमार ने लिखा है, पहले मैं सेवा केंद्र में था, ऐसा था वैसा था, बहन जी ने कहा अभी सब कुछ छोड़ दो, फिर उधर आया, घर वाले नाराज, फिर इधर डिस्टर्बेंस हुआ तो उधर गया, अब उधर वाले गए थे इधर मत आओ उधर जाओ, वो कहते अब इधर भी मत आओ उधर जाओ, मैं कहाँ जाऊँ, ना इधर ना उधर। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जीवन के जिनका उत्तर डायरेक्ट नहीं है यस और नो में, हाँ और ना में, ब्लैक एंड वाइट, बहुत टफ प्रश्न है, पेचीदा। उसको ये नहीं कहा जा सकता है तुम यहाँ रहो या ना, या ना डिपार्टमेंट बदल दो, ये नहीं कहा जा सकता। तो इन दो दिनों में क्या करना है, केवल देखना, हमारे भीतर जो घाव है उनका इलाज है प्रेम भरी साक्षी दृष्टि, साक्षी की एक दृष्टि, उसे प्रेममय दृष्टि की आवश्यकता है। वो दृष्टि उस पर पड़ते ही हीलिंग चालू होगा, हीलिंग तब होगा जब उस पर दृष्टि पड़ेगी, पर हम दृष्टि दे ही नहीं रहे। हम देते हैं तो याद करते हैं कि ऐसा याद करना है, तो याद करते ही स्वरूप बन जाता है और फिर दुख होता है। हम कह रहे हैं देखना, ये स्क्रीन है उस पर ये सारी घटनाएं हुई, ये सारे स्थानों पे हम घूमे, इन सारे लोगों के संपर्क में आए, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ सबसे डिटैच्ड, सबसे अलग, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। दो दिन साक्षी भाव की साधना करनी, ये सर्वोच्च साधना है, ये साधना भी है साधन भी है, ये लक्ष्य भी है मार्ग भी है, दोनों है। देखना केवल स्वयं को, मैं कहा। और अतीन्द्रिय सुख पुरुषार्थ नहीं है, वो परिणाम है। और वो परिणाम आएगा जब हम इंद्रिय सुख को आर पार देख लेंगे। तो इस इंद्रिय सुख की कुछ बातें हम देखेंगे, उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई। इंद्रिय सुख की सच्चाई दिख गई कि अपने आप गिर जाएगा, और जो बचेगा वह अतीन्द्रिय, वो तो शाश्वत है, वो ध्रुव है, वो कहीं नहीं जाएगा। जो अनित्य है, जो अशाश्वत है, उसको देखना है बस। इसको भर देख लिया तो ये अपने आप प्रकट होगा। धूल मिट्टी रखी है, धूल मिट्टी को बस हटाना है, सोना वहीं पर है, आत्मा वहीं है। हम चालू करते हैं साधना मैं आत्मा हूँ से, इसको थोड़ा बाजू रख के देह की साधना करनी। ये देह भी क्या है, इसको आर पार देख लेना। इसकी वास्तविकता देखते ही वो अपने आप प्रकट हो। तो ये जो इंद्रिय सुख है, इसके कुछ दोष है। क्या क्या दोष है कुछ आप बताएं, तो फिर हम चालू करें। ऐसे 21 प्रकार के दोष है इन इंद्रिय सुखों के। कोई भी इंद्रिय, आँख देखना चाहती, कान सुनना चाहती, जबान टेस्ट करना चाहती, स्पर्श, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, ये 5 रस है, 5 इंद्रिय सुख है, और 5 इंद्रिय ये सुख इनको टकराते हैं, और टकराते ही संवेदना उत्पन्न होती है, सुखद या दुखद। सुखद है तो एडिक्शन होता है, दुखद है तो घृणा उत्पन्न होती है। किसी ने चुबाया वो नहीं चाहिए, फिर कर्कश आवाज नहीं सुनना चाहते, दुर्गंध नहीं सुनना चाहते, कुछ खाया अच्छा नहीं है टेस्ट, अगली बार नहीं खाएंगे उसको। इंद्रियों की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। क्या क्या दोष है इंद्रियों में? इंद्रिय सुख में क्या क्या दोष है? इंद्रिय सुख जो है उसमें कुछ दोष है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो कौन से कौन से? जैसे कि आसक्ति और आकर्षण और टेम्पररी, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है, दुख देता है, और वही वही चीज इच्छा होती है। क्यों काम विकार आत्मा छोड़ ही नहीं पाती लास्ट तक? परमात्मा का अवतरण केवल इस एक ही पॉइंट के लिए हुआ है, पतित को पावन बनाने में आता हूं, क्रोध को अक्रोधी बनाने नहीं, लोभ मोह अहंकार ये सब बाद में, मेन उसका एक ही है ये। क्योंकि इतना गहरा वो संस्कार डीप चला गया है जन्म जन्म का, कि जो जन्मांध है, जिसकी आंखें नहीं है जन्म से, वो भी वासना से मुक्त नहीं, उसने तो स्त्री का शरीर ही नहीं देखा है। सबसे पहला दोष है आसक्ति। सारे इंद्रिय सुख क्या करते हैं? अटैचमेंट उत्पन्न कर देते, अटैच्ड हो जाते हैं। एक बार कुछ खाया वो अच्छा लगा कि अगली बार वही चाहिए, फिर दूसरे दिन खाया, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पांचवे दिन, फिर वही 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 चाहिए, फिर उससे छूट नहीं सकते, वो टेस्ट उसका बैठ गया है। हमारी एक बहन आती है उपड़ी में, वो मधुबन जब आती है तो इतना एक डब्बा लेके आती है, ठेसा तिखट, यहाँ का एकदम फीका लगता है उसको, एकदम फीका भोजन, एकदम तीखा चाहिए उसको। तो पर्स में वो 5 दिन का स्टॉक होती है, वो चाहिए, वो जब तक नहीं खाएंगे तब तक मजा नहीं है। कहीं पे भी डालिए, अब कहाँ डालते वो नहीं पता पर वो एक बंधन बन गया ना। अब वो चोरी चोरी हो गया तो, और किसी ने ले लिया तो कितना दुख, फिर योग लगेगा क्या? मतलब सारी बुद्धि उस पे फोकस्ड है, ध्यान रहता है कि ये जाना नहीं चाहिए कहीं। बुद्धि फंस जाती है। हम नेपाल गए थे, वहाँ एक भाई है, तो जिस दिन मोमोज बनने वाले होते हैं उसका सुबह से योग अच्छा लगने लगता है बाबा से, एकदम लाइन क्लियर हो जाती और वो राजा की तरह है वो मोमोज। वो आता है ना, सारे हट जाते, चाहे कितना भी खाया हो पेट अपने आप क्लीन हो जाता है, जगह मिलती है उसकी। वो भी तो एक बंधन ही हो गया। तो सारे इंद्रिय सुख, सारे भोग ए फॉर अटैचमेंट उत्पन्न करते। दूसरा बी, बी फॉर बहुत दुख कम सुख। इसमें सुख तो है पर सुख की मात्रा कम है, दुख की मात्रा ज्यादा है। हर साल मधुबन में 7 दिन नीम का जूस बनता है। इस बार एक भाई ने 1 लीटर पी लिया, हो 4 दिन एडमिट था, अभी छुट्टी किया कुछ दिन, ज्यादा सफाई हो जाए, ज्यादा ताकत आ जाए, पूरा एकदम ही क्यों नहीं साफ कर लिया, रोज 7 दिन कौन करेगा, एक ही दिन में पी लिया। इंद्रियों में सुख तो है पर दुख की मात्रा ज्यादा है, वो हम देख नहीं पाते क्योंकि खाली ट्रेलर देख रहे हैं। उसको अगर पूरा खींचो, किसी भी गृहस्थी से पकड़ो और उसको पूछो संसार में क्या सुख है, क्या बोलेगा, है ही नहीं, दुख ही है उसमें। और वो भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए काम विकार को कहा जाता है भ्रामक सुख, ये शब्द है। वो क्या है, भ्रामक, ऐसा लगता है पर है नहीं। तीसरा है क्रेविंग, सी फॉर क्रेविंग। क्रेविंग अर्थात तलब, जैसे दारू पीने के बाद व्यक्ति रोज 40 साल से दारू पी रहा है और 2 दिन अगर उसको न मिले तो क्या होता है, तलब होती है, क्रेविंग होती है, पूरा शरीर मांग करता है, डिमांड करता है, उसको चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो मर भी सकता है। इसलिए किसी भी एडिक्ट को डायरेक्ट छुड़ाने के लिए नहीं कहते, धीरे 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 मात्रा कम करनी पड़ती है। 40 सिगरेट रोज पीता है, चेन से स्मोकर होते हैं ना, चेन स्मोकर मतलब बीड़ी पीते पीते अभी वो आग अभी उसकी खत्म हुई नहीं तो दूसरी तैयार, उसको कहते हैं चेन। दूसरी, तीसरी, चौथी, नॉन स्टॉप, 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं हो। तो सभी जो इंद्रिय सुख है उसमें क्या है, क्रेविंग। वो अगर नहीं मिलता है आज तो उसकी शरीर डिमांड करता है, उसको तलब उठती है, वो चाहिए। उसके इस स्वरूप को हमको समझना है, ये है, करना कुछ नहीं है, केवल समझना है, ऐसा होता है। चौथा, डिसेप्टिव, वो कैसा है, धोखेबाज। ये जो सुख है वो कैसे है, सारे धोखा देते हैं। व्यक्ति कल्पना करता है मन ही मन सेंशुअल फैंटेसीज, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, पर एक्चुअली जब करने जाता है तो उतना उसको आनंद नहीं मिलता है जितना उसने सोचा था। वो कल्पना का आनंद है, उतना एक्चुअल में है ही नहीं इंद्रिय सुख। इसलिए ये सारे इंद्रिय सुख क्या करते हैं, धोखा देते हैं। कोई भी हो, फिर काम विकार, भोजन, कोई भी, जिसमें वो हर सुख जो टच से उत्पन्न होता है, टच, वो अंततोगत्वा दुख में परिणित होता है। किसी का हाथ, किसी का स्पर्श, बहुत अच्छा अनुभव होता है, परंतु ये सारे सुख अंततः दुख में की ओर ही ले जाते हैं। यही उनका स्वभाव है, उसके स्वभाव को समझना है। दिस इज द नेचर, ये ऐसे ही है वो। अगला ई, एक्सर्शन। ये सारे इंद्रिय सुख को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलते हैं, कुछ तो कुछ करना पड़ता है, तुरंत नहीं मिलते हैं। वो काम के सुख के लिए इतना बड़ा सब ड्रामा रचना पड़ता है, घोड़े पर बैठो, बैंड बाजा, पैसे खर्च करो, कपड़े खरीदो, ये सब क्या है, सब कंडीशनिंग है। सब बंधन, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाके वो मिलता है। तो इसके स्वरूप को समझना है, इंद्रिय सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता, और इतनी मेहनत करने के बाद, मिलने के बाद भी उसका ये स्वभाव है। अगला है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग अर्थात क्षणिक है। ये सारे सुख कैसे है? क्षणिक। ये हर व्यक्ति को पता है, फिर भी उसमें फंसता है। एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता क्या करता है, वो हड्डी खाता है। हड्डी में कुछ है क्या टेस्ट? नहीं। फिर उसको टेस्ट कैसे लगती है? उसके दांतों से खून बहता है, यहाँ से, होठों से, वो अपना ही खून पीता है, उसको लगता है वो हड्डी से आ रहा है। पुरुष को लगता है सुख स्त्री से आ रहा है, और उस स्त्री का कोई संबंध ही नहीं है, उसके ही शरीर में जो रस है वही वीर्य बाहर निकल रहा है, और उसी से सुख अनुभूति हो रही है। उसको लग रहा है उस स्त्री से उत्पन्न हो रहा है, उस स्त्री का उसमें कोई संबंध ही नहीं है। अगर होता तो इतनी छोटी छोटी कन्याओं के साथ विकर्म क्यों होते? उसमें कौन सा सौंदर्य, उसका तो शरीर ही डेवलप नहीं हुआ है। अर्थात ये वैसा ही है जैसे वो कुत्ता अपने ही खून को पीकर अनुभव करता है, वो सुख उस हड्डी से आ रहा है। तो सारे इंद्रिय सुख कैसे? क्षणिक, थोड़ी देर के लिए है बस, उसके बाद खत्म, धोखे वाले है ये सब। अगला, इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है। सारी मुरलियों को अगर स्टडी करो तो उसमें एक ही चीज बार बार आती है, आत्माभिमानी स्थिति। सारा अध्यात्म केवल एक ही चीज पर निर्भर है, ये देह बोध को हटाना। जिसका ये जितना हटा वो आगे, बाकी चीजों से इसका कोई संबंध नहीं। किसने कितनी सेवा की, कितने सेंटर खोले, कितने भाषण दिए, कितनी भट्टिया की, कराई, क्लास सुने सुनाया, ये सब एक तरफ। मुख्य है देह बोध से कितना मुक्त है, ये इंद्रिय सुख कितने व्यर्थ हो गए जीवन में। तो इंद्रिय सुख जी ज्ञान एनिमी है, एच नेक्स्ट, एडिक्टिव है सभी इंद्रिय सुख। एडिक्टिव अर्थात लत, लत हो जाती है उसकी। रोज खाने के बाद एक मास तक गुड़ खाओ, भोजन किया उसके बाद में गुड़, एक मास के बाद अगर गुड़ ना मिले तो ढूंढेंगे, सोने का टाइम है परंतु अपना नींद त्याग के जाएंगे वहां कहीं भंडारे विंडारे में ढूंढने कहीं, क्योंकि अब शरीर डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसको उसकी आदत पड़ गई। तो सभी भोग, सभी इंद्रिय सुख लत उत्पन्न करते, व्यसन, एक आदत, उसको चाहिए वो। और जो आदत में है उसको पता ही नहीं रहता है कि ये सब ऑटोमेटिक होता है। आदतें जो होती है ना, अंदर का हिस्सा बन जाती है। कोई भी चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो अच्छी लगने लगती है, कुछ भी हो। इंटरनेट बार बार देखते रहो, उसकी आदत पड़ जाती है। और रील्स देखते रहते रहो, दो दो मिनट के, 30-30 सेकेंड के, उसकी एक एडिक्शन क्रिएट हो जाता है कि वो चाहिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत नहीं। क्लास एक आधा कोई दादी का या किसी का भी हम सुनने बैठते बहुत असहनीय होता है, क्यों? क्योंकि इतना सुनना, अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि बस वो उतना ही देखना अच्छा लगता है, कोई कॉमेडी, कोई कुछ, कोई थोड़ा सा, बाकी अगर उसको कुछ दिखाया तो उसको मज़ा नहीं आता। ये प्रॉब्लम है इसका। इतनोंने अनुभव यही लिखे हैं इसमें प्रश्नों में, इतना बुरी तरह गिरद गए हैं, क्या किया जाए, ऐसे सब प्रश्न है। ऊपर से सब कर रहे हैं, अमृत वेला, मुरली, दिन भर सेवा, ये सब चालू है, बट वो भी साथ साथ चालू है, बैलेंस चल रहा है सत्कर्म का और विकर्म का। पुण्य भी कर रहे हैं, दिन भर पुण्य, कोर्स कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, पार्टियों को घुमाते हैं, लोगों को समझाते हैं, मधुबन ले आते हैं, वो सब तो चालू ही है, पर साथ में अखंड पुण्य अखंड पाप, सतत पुण्य सतत पाप, दोनों साधनाएं साथ साथ चल रही है, पाप की साधना और पुण्य की साधना। और फिर पूछते हैं किसको बताएं, ये भी पूछा है, ये किसको बताया जाए। जिनको बताए वो भी खुद भी श्रीमत पर नहीं है, ऐसा भी पूछा है, तो बताए तो किसको बताए। आत्मा एक कमजोर है, एच हैबिट या एडिक्शन, आय इनटॉलरेबल, इंद्रिय सुख में व्यक्ति अधैर्य उत्पन्न होता है, उसको तुरंत चाहिए, अगर उसको थोड़ा भी डिले हो जाए तो उसको पसंद नहीं आता है। एक अंदर ही अंदर स्वभाव उत्पन्न होता है इंद्रिय सुखों के वजह से, अधैर्य का स्वभाव, इनटॉलरेंट हो जाता है व्यक्ति, वो सहन नहीं कर सकता दूसरे गलतियां करे, दूसरे कुछ और करे, कुछ भी हो जाए एकदम अधैर्य उत्पन्न होता है, ये कैसे कर दिया तुमने, या मुझे कैसे नहीं मिल सकता, मुझे चाहिए अभी के अभी चाहिए, ये मुझे चाहिए, जो करना है करो, अगर नहीं मिला तो देख लो फिर। अगला है खतरा, ये सभी इंद्रिय सुखों में जेपर्डी अर्थात खतरा है, कोई ना कोई खतरा तो है ही उसमें, हमें दिखाई नहीं देता है, अगर वो सुख भोगते हुए सभी को दिख गया तो जो हमें योगी तपस्वी समझते हैं वो क्या समझेंगे, ये तो भोगी निकले। ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं इनको केवल सोचना है, ये ऐसा है, ये उसकी वास्तविकता, इसको देख लेना है बस, और इसको रिवाइज करना है जैसे हम बाकी चीजें रिवाइज करते हैं, इसको रिवाइज करना है, पूरी मूवी देखनी है भोग की, तो उसके प्रति सहज वैराग उत्पन्न होगा, नहीं तो उसमें डूबे रहते। अगला नॉट्स अर्थात गांठे उत्पन्न करते हैं, जितना भोगेंगे मानसिक गांठे निर्माण होती है अंदर ही अंदर, वो भोगना कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी बहन या भाई से आ सकती है, उससे फोन पर ही बात करते रहते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स उधर से सुनाते हैं, हम अपने इधर से सुनाते हैं, हल दोनों के पास नहीं है, पर ये मानसिक गांठे उत्पन्न करना है, नहीं नहीं, जितना जितना हम किसी से जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति से गांठे उत्पन्न होती है, चाहे वो कितना भी प्योर हो, रिलेशन कितना भी अच्छा हो, वो बंधन ही है, उसमें गांठे उत्पन्न हो ही जाती है। हम जब मुंबई में थे तो हमारे साथ एक डॉक्टर था, वो 24 घंटे फोन पर ही रहता था, आईसीयू में ड्यूटी रहती थी, बहुत एकदम एक्सपर्ट था, उससे हम सीख रहे थे, और उसकी इसी आदत की वजह से हम थोड़ा ज़्यादा सीखे, क्योंकि वो 24 घंटे फोन पर ही रहता था, और फोन पर ये इतना ही चलता था, उसकी मम्मी तो नहीं होगी, पापा भी नहीं है, और बहन तो नहीं है, अब बचा कौन, बस यही बातें चलती थी। पेशेंट सीरियस हो जाता था, कार्डियक अरेस्ट हो गया था, सिस्टर उसको पकड़ के लेके आती थी, अरे कुछ करो, तो वो एक हाथ से फोन और एक हाथ से पेशेंट को रिससिटेट CPR, वो हो गया कि तुम देख लो, वापस उधर फोन पे 24 घंटे फोन, ये एक एडिक्शन ही है, व्यक्ति का एडिक्शन, हमको चाहिए कोई, वो हमको सुने हम उसको सुनाए, वो हमको सुने हम उसको सुनाए, क्या बात करनी है फोन पे किसी से, पहला प्रश्न तो ये है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट बस, हाय हेलो ओम शांति ठीक है बाय, जितना वो लंबा खींचेंगे वहां बंधन चालू, क्योंकि उसको फिर लगता है ये मेरी सुनने वाला है, मेरी जो समस्याएं चल रही है इधर ये सुनेंगे, ये कुछ करेंगे। कर कोई कुछ नहीं सकता, उसको अपना दुख खुद उसका हिसाब है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ बैठ के, तुम देखो जो करना है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने आप बताओ क्या करो। हमने अपने जीवन में देखा शुरुआत में, जिनको हमने बहुत टाइम दिया फोन पर, कोई किसी का फोन आया ऐसा ऐसा है ठीक है ये करो, उसके बाद देखा जो कुछ उसको बताया उसने कुछ भी नहीं किया। वो उसका प्रश्न अभी भी वही है अगली बार जब फोन किया तो, फिर सोचा ये फालतू है, तुमको जो करना है करो, मुरली है, बाबा है, अमृत वेला है, पूछो डायरेक्ट, हम क्या बताएं। तो गांठे ये, उसके बाद है एल लोनलीनेस। जितना ज्यादा इंद्रिय सुख में डूबता है व्यक्ति उतना भीतर खालीपन आता है, रिक्तता बेचैनी होती है। एक कुमार ने लिखा है, दिन भर अमृत वेला करता हूँ, फिर मुरली सुनता हूँ, फिर एक्सरसाइज जाता हूँ, जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भोजन बनाता हूँ, फिर भोजन खाता हूँ, फिर जॉब पर जाता हूँ, जॉब करता हूँ, शाम को लौटता हूँ, सेंटर पर जाता हूँ, सेवाएं करता हूँ, वापस आता हूँ, भोजन बनाता हूँ, खाता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, चार्ट लिखता हूँ, ये किया, और जैसे ही बिस्तर पे गए कि खालीपन पकड़ते, फिर बेचैनी होती है, और फिर हाथ में केवल ये मोबाइल रहता है, फिर ये कहाँ से कहाँ ले चला जाता है, फिर ये बंद, फिर सुबह अमृत वेला, फिर से वही दिनचर्या। योगी जीवन 23 घंटे 50 मिनट और भोगी जीवन 10 मिनट, पर वो 10 मिनट बड़ा गहरा है, वो डीप संस्कार है। 10 ही मिनट गिरता हूँ 24 घंटे में, पर वो 10 मिनट गिरना अगले दिन के 20 मिनट गिरने के लिए आकर्षित करता है, आमंत्रण देता है। तो इस इंद्रिय सुख के स्वरूप को समझना है, खालीपन लाता है। अगला रोग, जितना ऐसा नहीं कि जो लोग भोग रहे हैं उनको कोई रोग नहीं होते, कितने रोग, इतनी बीमारियां, हर महीने में एक बार कोई ना कोई निवासी आता है हार्ट अटैक के साथ, या स्टेंट, इसका एंजियोग्राफी हो गया उसको स्टेंट लग गया, इसका एंजियोग्राफी हो गया उसका बाईपास हो गया, फिर इसका अभी शुगर डिटेक्ट हो गया, फिर अभी इसका ये हो गया, अभी उसका वो हो गया, इसको स्ट्रोक आ गया, उसको ब्लीड हो गया, इसका ऑपरेशन हो गया, इतनी सारी ढेर बीमारियां, ऐसा शायद ही कोई हो जो बीमारियों से पूर्ण रूप से मुक्त, बहुत कम, किसी को कुछ ना कुछ, और कुछ ना हो अगर उसको पूछो कोई तकलीफ, कुछ तकलीफ नहीं है, सब ठीक है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, पेट ठीक है, नहीं वो थोड़ा गैस तो रहता ही है, इससे तो मुक्त नहीं है। कब्जी, हाँ वो कब्जी तो वो तो है, इंटरनेशनल डिसऑर्डर है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शरीर में चल रहा है। रोग भोग इतने सस्ते नहीं है, भोग अपने साथ प्राइस टैग लगा कर आता है, हर भोग के साथ में प्राइस टैग है। वो जो भोगने वाले दिख रहे हैं ना सारे, बहुत चुप तो करना पड़ता है उनको बहुत सारा, और जब चुप तो करते हैं तब फिर कुछ नहीं कर सकते, तब दूसरों को सलाह देते हैं जिनकी सलाह कोई नहीं मानता। फिर एक भाई है, वो कहते हैं कि ये चाय ने मेरा बहुत नुकसान किया है, 40 साल चाय पीता रहा, अभी वो सबको सुनाते हैं चाय बंद चाय बंद चाय बंद, पर उनका कोई सुनता नहीं ऐसे बहुत लोग हैं। तो पहले ही देख लेना है कि जितने भोग हैं वो सब की क्या है, प्राइस है, एक चुप तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छा है बहुत खा लिया और बहुत ठीक ही रहे, ऐसा नहीं होता है। जब भी ब्रह्मा भोजन होता है सुखधाम में, अगले उसके अगले दिन 3-4 लोग तो आ ही जाते क्योंकि या तो ज़्यादा खा लिया क्योंकि बार बार मिलता थोड़ी ना है, बार बार बनता भी नहीं है, और उसका फिर कंट्रोल ही नहीं है। खा लिया खा लिया खा लिया, अगला निग्लिजेंस, भोग भोगते भोगते व्यक्ति बेपरवाह हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, उसकी जो सेंसिटिविटी है आध्यात्मिक वो कम हो जाती है, स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। ये सारे देखना है, ये सब होता है, खाली स्टडी करना है, दूर से बैठ के स्टडी करना है, ये सब हो रहा है। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, मन को अगर कहो जबरदस्ती आज से ये खाना बंद या वो करना बंद, तो उसको शौक लगता है, फिर वो बिल्कुल उसको दुख होता है बहुत। मन को यदि कहो आज जन्म मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, अंदर से डर जाता है सबकॉन्शियस माइंड, अरे बाप रे। हाँ, उसको अगर कहो 6 घंटे ठीक है, उसको थोड़ा ठीक लगता है, 12 घंटे थोड़ा ठीक है, 12 घंटे होने के बाद फिर कर सकते हैं, अगले दिन 14 घंटा, ये उसको समझ में आता है। जबरदस्ती और अचानक बदलाव कोई भी चीज़ का, किसी भी आदत का, हर व्यक्ति अपने एक रूटीन में कैद है, वो इतने ही बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये खाना है, ये दिन ये खाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस रूटीन में यदि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो वो दुश्मन मालूम पड़ता है। हमारे नींद के टाइम पे अगर कोई कॉल करता है तो वो सेवा का कॉल नहीं लगता है, वो एकदम दुश्मन, ऐसे अनुभव होते। तो सबसे पहला अगले 2 दिन जब यहाँ हो, अपनी रूटीन को देखना है, अपने जीवन को देखना है, जीवन की आई हुई परिस्थितियाँ, स्थान, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से संस्कार, कौन कौन से रोग शरीर में चल रहे हैं, उसकी भी यात्रा है हर आत्मा की अलग अलग। ये हुआ। अगला आउटबर्स्ट, विस्फोट होता है। ये जो भोग है उसका एक दिन क्या होता है, विस्फोट, क्योंकि जहां भोग है वहां बीच बीच में दमन होता है, और जहां दमन है वहां विस्फोट होता है। एक चीज है जो हमको नहीं मिल रही है तो भावनाओं का विस्फोट होता है, क्यों नहीं मिल रही है, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पैसा, वो कार, वो कमरा, वो गाड़ी, वो कपड़े, कुछ भी, एनीथिंग, वो पोस्ट, वो पद, वो चाहिए। तो भोग में विस्फोट समाया हुआ है। अगला प्लॉट, षड्यंत्र करता है व्यक्ति। जो भी भोगी है वो निरंतर अपनी वस्तु को पाने के लिए, पद को पाने के लिए, प्रतिष्ठा को पाने के लिए, स्त्री को पाने के लिए, जमीन को पाने के लिए, डिपार्टमेंट पाने के लिए, भोजन सामग्री पाने के लिए क्या करता है, षड्यंत्र, ज्ञान युक्त षड्यंत्र, योग युक्त षड्यंत्र, राज युक्त षड्यंत्र, श्रीमत अनुसार षड्यंत्र, ताकि ये षड्यंत्र दिखाई ना दे, सबको लगे कि हम श्रीमत पर कर रहे हैं सब कुछ। उसको भी देखना है कि हमने ही कितने षड्यंत्र किए हैं। झूठ बोलना पड़ता है। कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे हैं कि मेरे एक दोस्त को ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है, मेरे दोस्त को बार बार फोन आते रहता है, उसको ये स्वप्न दोष का, नाइट फॉल का प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूं, ऐसे प्रश्न है दूसरों पर थोपे हुए कि हम तो सही है, उनका क्या करना है आप बताओ, उन्होंने बोला है आपसे पूछने के लिए, ऐसे पूछते हैं। This is, हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं झूठ भी बोलते हैं। फिर प्रश्न हमारा ही है, टोली में जाते हैं ना कि हमने तो ले लिए, हमारे साथ है उनके लिए भी चाहिए थोड़ी, साथ में कोई है ही नहीं, अपने लिए ही चाहिए रात के लिए। तो मन ऐसे खेल खेलता है। अगला डिलेमा, क्यू, क्वांड्री इसको कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात दो के बीच में फंस जाते, ना इधर ना उधर, क्योंकि एक तरफ हम दिन भर पढ़ते रहते हैं मुरली और उसमें आता है संयम, स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा राजा हूँ, और दूसरी तरफ हम जो कर रहे हैं वो सब गुलामी का है। तो एक मन में द्वंद्व खड़ा हो जाता है, इधर या इधर, इधर या इधर, इधर या इधर, टू बी और नॉट टू बी, एक दुविधा की अवस्था ये होता है। इसको भी देखना है, इस दुविधा में अगर है तो कैसे निकले इससे बाहर। उसके बाद में सेल्फिश व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, भोग उसे क्या बनाते हैं, स्वार्थी। हम हमारे पास जो वस्तु अच्छी लगती है हम बांटना नहीं चाहते, हो हमें ज्यादा मिल जाए, हम नहीं देना चाहते किसी, भोग स्वार्थी बना देता है व्यक्ति को। अगला टेम्पटेशन, बार बार टेम्पटेशन आते हैं। जब अगर किसी को पता चल गया कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है तो वो वही ला के देंगे। इसलिए कभी भी गलती से किसी को ये मत बताना कि हमें ये खाना पसंद है नहीं तो वही ला के देते हैं कि ये आपको पसंद है ना, इसके लिए लाया। अब फिर उनकी बात माननी पड़ती है, तो हो गया ट्रैप। लाइक्स डिसलाइक्स, इसको भी गुप्त कर देना। लास्ट, ये सारे जो इंद्रिय सुख है बड़े ही अगली और डर्टी है, छीछी है। और रिग्रेट, पश्चाताप उत्पन्न करते हैं। भोग लेने के बाद फिर दो चीजें हैं, अगर नहीं भोगे तो बेचैनी होती है, और भोग लिया तो पश्चाताप होता है। ये दुविधा है, ये ऐसा है, नहीं अगर किया तो बेचैनी, अगर कर दिया तो पश्चाताप। ये पूरा ही एक सर्कल है, ट्रैप। इन सब से छूटने की एक ही विधि है, साक्षी भाव। इन सब से छूटने की एक ही विधि है उनको देखना। अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना है कि मैं पापी हूं, मेरे से ये हुआ, ठीक है जो हुआ हुआ, केवल देखो अब उसको। भूत का अतीत जो है ना, पाठशाला एक, पास्ट क्या है, एक स्कूल, उसे सीखना है कि जीवन ने ये सिखाया, और सबसे ज्यादा किसने सिखाया, विघ्नों ने, परिस्थितियों ने, समस्याओं ने, स्तुति ने, प्रशंसा ने कुछ भी नहीं सिखाया, मान्यता ने कुछ नहीं सिखाया, क्रिटिसिज्म ने ज्यादा सिखाया, विरोध, ये सब ने हमें सिखाया। और हमने अपने जीवन में जितने भोग भोगे हैं वो वास्तव में भोग ही है एक रीति से, देखना है उनको, इससे ये सब मिला, दुख मिला, पश्चाताप मिला, बेचैनी मिली, अस्थिरता मिली, क्षणिक थे वो, ज्यादा दुख कम सुख, धोखा मिला, आंसू मिले, खालीपन मिला, रिक्तता मिली, और टेम्पटेशन मिल गया, और उसके व्यसनी। हर व्यक्ति निकलना भी चाहता है कि मैं इससे बाहर निकलूं, पर कहाँ कैसे, क्योंकि जो मार्ग वो ढूंढता है वो या तो दमन का मार्ग ढूंढता है, उसको जबरदस्ती दबाता है, और जबरदस्ती कुछ करो तो नहीं होता, कभी नहीं हो, ये मार्ग जबरदस्ती का है ही नहीं, ये मार्ग उदात्तीकरण का है, उसके ऊपर निकल जाने का है। ये लाइन है, ये छोटी हो जाए, इसको बड़ा करना है तो क्या, इसको छोटा करना है तो क्या, एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, बड़ी खींच दिया कि अपने आप छोटी हो गई। ये इंद्रिय सुख है, अतिन्द्रिय सुख में चले जाओ तो ये छोटा पड़ जाएगा। इसलिए संपूर्ण जो धारणा है वो डिपेंड करती है बस तीन ही मेन पुरुषार्थ है, ए बी सी, ए अमृत वेला, इसी पर काम करना है सबसे ज्यादा, 2 से 5, अगर वो 3 बजे से है और पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, जल्दी सो जाओ, सेवाओं को इस तरह से एडजस्ट करो कि ताकि हम जल्दी उठ सके, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख अगर नहीं मिलता है सुबह तो दिन में इंद्रिय सुख खींचता है। दूसरा है बी, ब्रह्मचर्य, ये सबसे पावरफुल धारणा है। अगर ये कम ज्यादा हो रही है तो किसी बहन, किसी स्त्री, किसी के प्रति आकर्षण रहेगा, वो चाहिए, वो अच्छा है, वो अच्छी है, इसका गुण अच्छा है, इसका स्वभाव अच्छा है, बिचारी, इसको मदद करना चाहिए, इसको मार्ग दिखाना चाहिए, ये सारा ट्रैप है। हमारा ब्रह्मचर्य ही उनके लिए मार्गदर्शन है। हमारे शब्द कम, हमारी धारणा ही उनके लिए सेवा है। अगर हम गिर जाते हैं उसका भी अकल्याण, अपना भी अकल्याण, तो किसी का भी कल्याण नहीं होगा। और तीसरा है सी, सी अर्थात कंट्रोल ऑफ एपिटाइट, अर्थात भूख, अर्थात भोजन। तीन ही पुरुषार्थ है, चौथा और कोई पुरुषार्थ, और बाकी जो कुछ है, मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी स्थिति, सब परिणाम है। जिसने इन तीनों को मास्टर कर दिया, अमृत वेले की मास्टरी, ब्रह्मचर्य की मास्टरी और भोजन की मास्टरी, ये तीन हो गए कि बाकी सब परिणाम के रूप में ऐसे हाथ में आएगा गिफ्ट। और ये बात कितनी अच्छी है कि जिस जीवन की करोड़ों आत्माओं को का स्वप्न है, वो स्वप्न हम जी रहे, वो स्वप्न हम जी रहे, करोड़ों आत्मा चाहते हैं ना ऐसा बने, ये कितनी अच्छी बात होगी कि वो हम स्वरूप बन गए इंद्रिय जितेंद्रिय का। तो ये ऐसी इंद्रिय सुख के प्रति दोष दृष्टि निर्माण करनी है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, वो धीरे धीरे देखना है उसको, ये आदत है, कोई भी आदत हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकती है, उसके प्रति घृणा उत्पन्न नहीं करनी है, देखना है। हाँ वो तो है, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो ढूंढता है ना। हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं, बीड़ी क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि बीड़ी छोड़ती पेट साफ नहीं होता है, ये उन्होंने एक लिंक बना के रखी है माइंड में। तो ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है हर व्यक्ति की, किसी की कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, और इसमें गलत या अच्छा ऐसा नहीं है, इसके केवल स्वरूप को देखना है। और कोई भी चीज़ लंबा समय से हमने की है वो अचानक नहीं छूटेगी। अगर कोई 10 बीड़ी पीता है तो उसको कहो 8, फिर 4, और फिर 10, और फिर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है। जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, बर्गर देखना, एप्पल खाना बर्गर देखना, एप्पल खाना, आंखों को ये दिखाना और खाना ये, उसको भी धोखा देना है, उसने हमको धोखा दिया है, हमारे मन ने हमको धोखा दिया है, उसको धोखा देना है, उसको बताना ये वो है। एक व्यक्ति है, उसको दारू पीता है तो चारों तरफ सांप दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं अरे ये सांप नकली है, और वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे तो दिखते हैं, मेरे लिए तो सही है ना, दे आर रियल, मुझे दिखते हैं वो सब। तो कोई इलाज नहीं मिला तो उसने अपना इलाज निकाल लिया। क्या इलाज निकाल लिया, एक पिंजरा लिया, उसमें नेवले को डाल दिया और नेवला लेके घूमता है वो। अब सांप उसको तंग नहीं करते, लोग पूछते हैं पिंजरे में क्या है, वो कहता है नेवला। वो कहते हैं कहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं अदृश्य है। क्यों, सांप भी तो अदृश्य है। एक इमेजिनेशन को ख़त्म करने के लिए दूसरा इमेजिनेशन खड़ा कर दिया। हमारे मन की एक आदत है, उसको हटा के, उसको रिप्लेस, उसको हटाना नहीं, रिप्लेस कर देना, कुछ तो दूसरा रख दो वहां, तो वो मानेगा। गुलाब जामुन खाने की आदत है, अब गुलाब जामुन तो कहाँ से, उसको तो उसको रिप्लेस कर दो उसी के जैसा कुछ गुड़, तो कुछ दिन गुड़ से चलाओ, फिर और नीचे, फिर और नीचे, खेल करो, और कुछ दिन के बाद कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करते रहो, बताओ है कुछ नहीं, पर सोचो वो है, तो मन को थोड़ी समझ में आता है। वो एक अलग प्रॉब्लम था, वो एक मेडिकल इशू था वो एक अलग था, बट मन के साथ छल करना है, उसको डायरेक्ट दमन नहीं करना है, उसके साथ छल करेंगे ना तो वो उसको समझ नहीं आता है। अब एक रूल है मन का, वास्तविकता और कल्पना का भेद मन नहीं जानता है, रियलिटी और इमेजिनेशन उसको नहीं पता। काम विकार का मन में अगर इमेजिनेशन करो तो शरीर में वही सारी संवेदना होगी जो एक्चुअल क्रिया में होती है, रियलिटी और इमेजिनेशन उसे पता नहीं। अगर हम मन से सोचे कि मैं अभी कुटिया में बैठा हूँ बाबा के मधुबन में, तो वो तुरंत वो सारा अनुभव होते जाएगा अपने आप। तो इसी प्रिंसिपल का फायदा उठाना है एडिक्शन से फ्री होने के लिए, उसको कहो ये यही है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहना है, तो ये सब गेम है पूरे, जो रोज करते रहना है। ओम शांति।